रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। यातायात व्यवसायियों की मांग के विषय में सरकार और यातायात व्यवसायियों के बीच वार्ता रही बेनतीजा। अनावश्यक मुद्दा उठाकर प्रतिपक्ष द्वारा सदन अवरोध किया जाना लोकतंत्र के विपरीत है। प्रधानमंत्री ओली की टिप्पणी, कहा कल से संसद की नियमित गतिविधियां होंगी संचालित। गृहमंत्री लेखक का त्यागपत्र न आने तक संसद का अवरोध कायम रखने का नेकपा माओवादी केंद्र संसदीय दल का निर्णय। और यूक्रेन रूस के बीच वार्ता के बाद दोनों देशों की ओर से आई पहली प्रतिक्रिया, युद्धबंदियों और शवों के आदान प्रदान की हुई सहमति। अब समाचार विस्तार से। सरकार और यातायात व्यवसायियों के बीच हुई वार्ता में सहमति नहीं जुट पाई है। यातायात व्यवसायियों से मिली जानकारी के मुताबिक कल मंगलवार को भी यातायात बंद जारी रहेगा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के सह सचिव कृष्णराज पंत के नेतृत्व में गठित वार्ता टोली और यातायात व्यवसायी प्रतिनिधि के बीच वार्ता होने की जानकारी गृह मंत्रालय के सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्य ने दी थी। इससे पूर्व आज गृहमंत्री रमेश लेखक सहित की बैठक ने सहसचिव पंत के नेतृत्व में वार्ता टोली गठित की थी। बता दें कि गंडकी प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई राइट शेयरिंग नियमावली के विरोध में आज यातायात व्यवसायियों ने यातायात बंद करवाया था। सार्वजनिक यातायात न चलने के कारण आज सुबह से ही जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच आज जगह जगह जाकर यातायात बंद करवाते फिरने वाले 15 बंदकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये जानकारी नेपाल प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी रमेश थापा ने दी। उन्होंने ये भी बताया कि काठमांडू घाटी में प्रहरी ने 2 बसें चलाकर निःशुल्क सेवा दी है। संसद का अवरोध खुलवाने संबंध में बुलाई गई 3 दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक निष्कर्ष विहीन रही। आज प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार में बुलाई गई बैठक में संसद खुलवाने के लिए प्रतिपक्ष के सहमत न होने के बाद बैठक बिना निष्कर्ष समाप्त हो गई। ये बात नेकपा माओवादी केंद्र के प्रमुख सचेतक हितराज पांडे ने बताई। उन्होंने बताया कि बैठक में संसद का गतिरोध हटाने और प्रतिगामियों की गतिविधियों के बारे में विचार विमर्श हुआ था, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से गृहमंत्री रमेश लेखक के इस्तीफे के बिना ही संसद सुचारू करने की पेशकश की गई, जिसे प्रतिपक्ष ने नहीं माना और बैठक बेनतीजा ही रह गई। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि गृहमंत्री रमेश लेखक के इस्तीफे को अनावश्यक मुद्दा बनाकर प्रतिपक्ष का सदन अवरुद्ध करना लोकतंत्र के विपरीत है। आज बानेश्वर में एमाले संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि कल से संसद की नियमित गतिविधियां संचालित होंगी। राज संस्था पक्षधरों के प्रदर्शन के संदर्भ में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नागरिक सर्वोच्चता को छोड़कर महज एक परिवार को सत्ता देने की पैरवी करना मानसिक दरिद्रता है। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केंद्र ने विजिट वीजा मामले में गृहमंत्री रमेश लेखक का त्यागपत्र न आने तक संसद का अवरोध कायम रखने का निर्णय किया है। आज माओवादी केंद्र के संसदीय कार्यालय सिंह दरबार में हुई बैठक का निष्कर्ष था कि गृहमंत्री लेखक को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। ये जानकारी माओवादी केंद्र के उप महासचिव वर्षमान पुन ने दी। पूर्व राजा वीरेंद्र शाह सहित परिवार के सभी सदस्यों की नारायण हेटी दरबार में हत्या की घटना के 24 साल पूरे हुए हैं। बता दें कि विक्रम संवत 2058 जेठ 19 यानी ईस्वी संवत 1 जून 2001 शुक्रवार को नारायण हेटी दरबार में राज परिवार के भोज कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, अधिराज कुमार निराजन, अधिराज कुमारी श्रुति, वीरेंद्र के छोटे भाई धीरेन्द्र सहित राज परिवार के अन्य सदस्यों शांति, शारदा और कुमार खड्ग विक्रम शाह की हत्या हुई थी। अर्धमूर्छित अवस्था में रहे तत्कालीन युवराज दीपेंद्र को जेठ 20 गते को राजा घोषित किया गया था, लेकिन जेठ 22 गते को उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया था। गृहमंत्री रमेश लेखक ने मॉनसून जन्य आपदा की पूर्व सूचना अनुसार नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी के संबंधित यूनिट्स को तत्काल परिचालित करने के निर्देश दिए हैं। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल द्वारा की गई आपदा पूर्व तैयारी संबंध में संज्ञान लेते हुए गृहमंत्री लेखक ने तैयार अवस्था में रहने का निर्देश किया। सशस्त्र प्रहरी बल को आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के समन्वय में काम करने का सुझाव देते हुए उन्होंने राष्ट्रीय आपातकालीन कार्य संचालन केंद्र एनईओसी की एक शाखा रखने का भी आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि अधिक जोखिम वाले स्थानों में रात को गाड़ी चलाने पर रोक लगाने जैसी बातों को भी गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबु राम्ररी आइपुग्नु भयो नि
हजुर राम्ररी पुगे ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड
नमस्ते बाबुजू
नमस्ते आउनु न भित्रै
हुन्छ बाबुजू
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है
उहाँ त बिहानै हो हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न म खाना तयार गर्दै गर्छु है
हस् हस् भाउजू
ओए वाइफाई होला नि पासवर्ड माग्न
हे त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि
ए हो र
एनटिसीको डे प्याक लिन एस्ट्रिक 14-15 ह्यास डायल गर्न
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार
अब बाकी समाचार अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग ने सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री दीर्घ बहादुर सोडारी के विरूद्व 1,08,00,000 रूपये से अधिक के भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा दायर किया है आयोग के प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पोडेल के मुताबिक सोडारी के पास उतनी रकम की संपत्ति के स्रोत की पुष्टि न होने के कारण उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल के समक्ष नेपाल के लिए विभिन्न 6 देशों के नवनियुक्त गैर आवासीय राजदूतों ने ओहदों के प्रमाण पत्र पेश किए आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित अलग अलग विशेष समारोहों में उरुग्वे डेनमार्क जिम्बाब्वे जॉर्डन और केन्या के नवनियुक्त राजदूतों ने अपने ओहदों के प्रमाण पत्र पेश किए ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी चीन का 10 दिवसीय औपचारिक दौरा पूरा कर आज स्वदेश लौटी हैं। स्वदेश लौटने पर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने अपने चीन दौरे को फलदायी बताया अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार तुर्की में यूक्रेन रूस के बीच आज हुई बातचीत के बाद दोनों देशों की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने कहा है कि यूक्रेन को अब रूस का ज्ञापन मिल गया है और आगे के कदम तय करने के लिए यूक्रेन 1 हफ्ते का समय लेगा उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों पक्षों ने गंभीर रूप से घायल या बीमार सभी सैनिकों और 18 से 25 वर्ष की आयु के सभी लड़ाकों की अदला बदली पर सहमति जताई है साथ ही मारे गए सैनिकों के शव भी लौटाए जाएंगे रुस्तम उमेरोव ने कहा कि उन्होंने इस महीने के आखिर में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच संभावित बैठक पर भी चर्चा की है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भागीदारी भी हो सकती है वहीं रूसी प्रतिनिधिमंडल के नेता व्लादिमीर मेंडिस्की ने कहा कि रूस 6,000 युद्धबंदियों को यूक्रेन को सौंपने के लिए तैयार है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मारे गए यूक्रेनी सैनिकों के शवों को अगले सप्ताह लौटा दिया जाएगा व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन को सीमावर्ती क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 2 से 3 दिन के युद्ध विराम की पेशकश की है ताकि शवों की अदला बदली की जा सके भारत के सिक्किम में रविवार देर रात जमीन धंसने से कम 3 जवानों की मौत हो गई है और 6 अन्य लापता हैं घटना मंगन जिले उत्तरी सिक्किम के चातेन इलाके की है वहां सेना का एक कैंप पहाड़ी से गिरने वाले मलबे की चपेट में आ गया था मलबे में 4 जवान घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है बाकी जवानों की तलाश जारी है मंगन जिले में चुंगथांग के सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर अरुण थाताल ने पत्रकारों को बताया लाचेन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जमीन धंसने की वजह से सेना का एक कैंप चपेट में आ गया 3 जवानों के शव बरामद कर दिए गए हैं लापता जवानों की तलाश की जा रही है चातेन लाचेन से करीब 3 किलोमीटर दूर है वहां अक्सर जमीन धंसने की घटनाएं होती रहती हैं इलाके में सेना के कई कैंप हैं बता दें कि भारी बारिश और जमीन धंसने की घटनाओं के कारण उत्तर सिक्किम के मंगन इलाके को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है आज इस इलाके में 31 मई से फंसे करीब 1,500 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया मंगन जिले के जिलाधिकारी अनंत जैन के मुताबिक अब भी करीब 150 पर्यटक लाचेन में फंसे हैं लेकिन वो होटलों में सुरक्षित हैं अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर यातायात व्यवसाय की मांग के विषय में सरकार और यातायात व्यवसायियों के बीच वार्ता रही बेनतीजा अनावश्यक मुद्दा उठाकर प्रतिपक्ष द्वारा सदन अवरोध किया जाना लोकतंत्र के विपरीत है, प्रधानमंत्री ओली की टिप्पणी। कहा, कल से संसद की नियमित गतिविधियां होंगी संचालित। गृहमंत्री लेखक का त्यागपत्र न आने तक संसद का अवरोध कायम रखने का नेकपा माओवादी केंद्र संसदीय दल का निर्णय। और यूक्रेन रूस के बीच वार्ता के बाद दोनों देशों की ओर से आई पहली प्रतिक्रिया, युद्धबंदियों और शवों के आदान प्रदान की हुई सहमति। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।